चलिए आज समझते हैं पूज्य गुरुदेव के हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के चौथे संकल्प को। देखिए, ये सत्संकल्प हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को, अपने परिवार को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। और इसका ये चौथा संकल्प, ये हमारी जिंदगी की चार सबसे बड़ी शक्तियों पर कंट्रोल करने की बात करता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? वो है इंद्रियों पर संयम। और इसमें भी ना दो सबसे जरूरी हैं, हमारी जबान और हमारी जननेन्द्रिय। देखिए, जबान पर काबू रखा तो गलत सलत खाने से बचेंगे और सेहत अच्छी रहेगी, है ना? और जननेन्द्रिय पर संयम रखने से हमारा विल पावर मतलब मनोबल मजबूत होता है। दूसरी बात आती है समय की। देखिए, समय कोई मामूली चीज नहीं है, ये भगवान का दिया एक बहुत कीमती तोहफा है। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि आलस और टालमटोल ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये इस तोहफे को बर्बाद कर देते हैं। और जो समय का सही इस्तेमाल नहीं करता ना, वो सच में अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर रहा है। तीसरा पॉइंट है हमारे विचारों पर संयम। ये तो सीधी सी बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते और बन जाते हैं। तो अपने विचारों को यूं ही भटकने मत दीजिए, उन्हें हमेशा किसी अच्छे, किसी क्रिएटिव काम में लगाइए। याद रखिए, एक पॉजिटिव सोच 10 नेगेटिव सोच पर भारी पड़ती है। और आखिर में चौथा है पैसे पर संयम। देखिए, हमारी मेहनत का पैसा सिर्फ दिखावे या फिजूल खर्ची के लिए नहीं होता। जब इसका गलत इस्तेमाल होता है ना, तो घर में झगड़े होते हैं और समाज में अपराध भी बढ़ता है। तो समझदारी इसी में है कि पैसे को ना तो बेवजह जमा करें ना ही उड़ाएं, बल्कि अच्छे कामों में लगाएं। तो सार ये है कि इन चार चीजों, इंद्रिय, समय, विचार और धन पर काबू पाकर ही हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक सही और सार्थक दिशा दे सकते हैं।
आज की इस विशेष चर्चा में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के चौथे संकल्प को समझने का प्रयास करेंगे। ये चौथा संकल्प है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। तो चलिए इस गहरे विचार को खोलकर देखते हैं कि ये चार संयम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
देखिए, इस संकल्प का जो मूल आधार है वो संयम शब्द को समझना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार संयम केवल कुछ मतलब छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी पुरानी आदतों और पशु प्रवृत्तियों से लगातार संघर्ष करने का नाम है। ये एक तरह का आंतरिक महाभारत है।
आंतरिक महाभारत, ये तो बहुत दिलचस्प है।
जी, यही संयम हमारी जीवनी शक्ति का स्रोत है, जो हमें रोगी और दुखी होने से बचाता है। इसके बिना जीवन में दीनता, दरिद्रता और वो रोग शोक, ये सब आते हैं।
तो यह हमारी ऊर्जा को सही दिशा देने के बारे में है। सत्संकल्प में चार क्षेत्रों का उल्लेख है। पहला है इंद्रिय संयम।
जी, इसमें 10 इंद्रियों में से 2 को प्रमुख बताया गया है, एक तो जिह्वा और दूसरी जननेन्द्रिय। जिह्वा पर संयम से शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, क्योंकि हम स्वाद के लिए हानिकारक चीजें खाने से बचते हैं।
सही बात है।
और वहीं जननेन्द्रिय पर संयम से हमारा मनोबल मजबूत और आप कह सकती हैं अटूट रहता है।
और समय संयम के बारे में क्या? हम सभी को लगता है कि भाई समय कम है।
हाँ, ये तो सबकी शिकायत है। सत्संकल्प कहता है कि समय वो ईश्वर की दी हुई संपदा है। इसका दुरुपयोग हमें आलसी और प्रमादी बनाता है, जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं।
प्रमादी?
जी, जो लोग समय का सम्मान नहीं करते वे एक तरह से अल्पजीवी ही कहलाते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो।
समय के बाद आता है विचार संयम। हमारे मन में तो हर तरह के विचार आते रहते हैं, मतलब उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए?
यहाँ एक बहुत आकर्षक बात सामने आती है। विचारों को आवारा कुत्तों की तरह भटकने नहीं देना चाहिए।
अच्छा।
हमें जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने विचारों को एक लक्ष्य से जोड़कर रखना ही एक तरह से सृजनात्मक शक्ति को जगाना है।
और अंत में अर्थ संयम, यानी धन का अनुशासन। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है।
बिल्कुल, धन को परिश्रम और मनोयोग का फल माना गया है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि न तो इसका अनावश्यक संग्रह हो और न ही दिखावे, फैशन या आडंबर में इसका अपव्यय हो। सत्संकल्प में समुद्र का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। वो जल का संचय नहीं करता, बल्कि मेघ बनकर बरस जाता है और बदले में नदियों से 2 गुना जल पाता है।
वाह।
जी, जब धन अच्छे कार्यों में लगता है तो वो लक्ष्मी है, और जब अनीति से कमाया या खर्च किया जाए तो वो माया बन जाता है जिसका अंत निश्चित है।
तो इन सब का मतलब क्या हुआ?
ऐसा लगता है कि संयम का अर्थ केवल नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक भी है।
बिल्कुल, संयम का एक पक्ष जहां अनावश्यक खर्च को रोकना है, वहीं दूसरा पक्ष उस बचाई हुई ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाना है।
हमारी सामर्थ्य तभी अच्छे परिणाम देती है जब उसे बिखराव से बचाकर सही दिशा में लगाया जाए।
तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सत्संकल्प में कहा गया है कि धन का सदुपयोग लक्ष्मी है और दुरुपयोग माया। क्या ये लक्ष्मी और माया का सिद्धांत केवल धन पर लागू होता है, या हमारे समय, विचार और इंद्रियों की ऊर्जा भी दुरुपयोग से माया बन सकती है?
सोचने वाली बात।
नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के चौथे संकल्प पर एक गहरी और व्यावहारिक चर्चा करने वाले हैं।
जी,
संकल्प है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना?
हाँ, पहली बार में तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात है।
बिल्कुल, लेकिन आज हमारा मकसद है इसकी परतें खोलना और ये समझना कि ये चारों संयम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे, मतलब, एक क्रांति ला सकते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार संयम ही वो जीवनी शक्ति है जो मनुष्य को, आप कह सकते हैं कि, भीतर से खोखला होने से बचाती है।
एक तरह का आंतरिक कवच।
हाँ, एक आंतरिक कवच जो हमें रोगी और दुखी होने से बचाता है।
तो चलिए इस कवच को बनाने की विधि समझते हैं। इस चर्चा का लक्ष्य ये जानना है कि ये चार संयम असल में हैं क्या और इन्हें अपनी आदतों में ढालकर हम अपने व्यक्तित्व, परिवार और समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सत्संकल्प में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है। संयम की तुलना एक युद्ध से की गई है, अपने ही भीतर का महाभारत। वाह, अपने ही भीतर का महाभारत, मतलब ये कोई बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खुद की आदतों और इच्छाओं से संघर्ष है। इसका गहरा अर्थ है अपनी पुरानी गहरी जमी हुई आदतों और पशु प्रवृत्तियों से जूझना।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन एक युद्धस्थल ही है जहां हमें हर पल प्रतिकूल विचारों, परिस्थितियों और अपनी ही कमजोरियों से लड़ना पड़ता है।
हर पल।
जी, और इस संग्राम में संयम ही वो दिव्यास्त्र है जो हमें विजयी बनाता है, और जो इस युद्ध से भागता है या हार जाता है
तो उसका परिणाम होता है असंयम।
बिल्कुल, और वो अपने साथ दीनता, दरिद्रता और अनगिनत रोग शोक लेकर आता है।
और मुझे लगता है आज के जमाने में ये लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है। ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, हर तरफ से कुछ न कुछ हमें अपनी ओर खींच रहा है।
बहुत ज्यादा।
ऐसे में खुद से लड़ना तो वाकई एक महाभारत जैसा ही है।
इसीलिए सत्संकल्प कहता है कि जीवन देवता की उपासना तभी ठीक से हो सकती है जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में यहाँ वहाँ बहाना छोड़कर उसे सृजनात्मक कामों में लगाएं।
तो अगर ये एक युद्ध है तो हमारे हथियार क्या हैं? हमारी शक्तियाँ कौन सी है जिनसे हम लड़ेंगे?
बहुत अच्छा सवाल है। सत्संकल्प हमारी चार मूल संपदाओं की पहचान कराता है, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और धन शक्ति।
इंद्रिय, समय, विचार और धन।
हाँ, ये हमारे जीवन की चार सबसे बड़ी पूंजी हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इनमें से तीन, इंद्रिय, समय और विचार, तो हमें ईश्वर से मुफ्त में मिली है, विरासत में।
हाँ, ये हमें विरासत में मिली दैवी विभूतियां हैं। और चौथी यानी धन शक्ति, इन्हीं तीनों के सही इस्तेमाल और हमारे पुरुषार्थ से अर्जित की जाती है।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो इन शक्तियों को भगवान की दी हुई पूंजी मानकर इनका सही नियोजन यानी सही इन्वेस्टमेंट करता है, वो इस अभावों से भरे संसार में रहते हुए भी कभी अभाव में नहीं रहता।
तो चलिए इन चारों पूंजियों का सही इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इस पर एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे मुश्किल संयम से, इंद्रिय संयम।
जरूर, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन सत्संकल्प इन 10 में से 2 पर सबसे ज्यादा जोर देता है।
सिर्फ 2 पर?
हाँ, पहली है जिह्वा यानी हमारी जीभ और दूसरी है जननेन्द्रिय।
10 में से सिर्फ इन 2 पर ही इतना जोर, बाकी 8 का क्या?
क्योंकि ये दोनों हमारे जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को संभालती हैं। जिह्वा का सीधा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से है और जननेन्द्रिय का सीधा संबंध हमारे मनोबल से है।
शरीर और मन।
बिल्कुल,
एक शरीर को साधती है, दूसरी मन को। देखिए, स्वाद के लोभ में हम अक्सर ऐसी चीजें खा लेते हैं जो शरीर के लिए जहर की तरह है।
हाँ।
स्वाद स्वाद में भोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है और वहीं से अनगिनत रोगों की शुरुआत होती है।
ये तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा तला भुना खा लिया तो पूरा हफ्ता पेट गड़बड़ रहता है, और आजकल तो फूड ब्लॉगिंग और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जमाने में जिह्वा पर संयम रखना और भी मुश्किल हो गया है।
एक क्लिक पर कुछ भी हाजिर है।
बिल्कुल।
इसीलिए जिह्वा पर नियंत्रण का मतलब है शरीर पर नियंत्रण, और इसी तरह जननेन्द्रिय का संयम हमारे मानसिक बल को, हमारी संकल्प शक्ति को अटूट बनाए रखता है।
अच्छा।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसने इन दो इंद्रियों को साध लिया, उसने मानो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चाबी पाली।
इंद्रियों पर काबू पाना तो एक अंदरूनी लड़ाई है, ये समझ में आता है, लेकिन समय का वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, बस रेत की तरह फिसलता जाता है। इस पर संयम बरतने का क्या मतलब हो सकता है?
सत्संकल्प समय को ईश्वर प्रदत्त संपदा कहता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी हर रोज एक निश्चित मात्रा हमारे खाते में जमा होती है, चाहे हम अमीर हों या गरीब। जो व्यक्ति इस खजाने को संभालने में ढील बरतता है, वो निश्चित रूप से दो शत्रुओं का शिकार हो जाता है, आलस्य और प्रमाद।
आलस्य और प्रमाद, ये शब्द हम अक्सर एक साथ इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे लगता है इनमें कोई गहरा अंतर है।
हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आलस का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना, शरीर में ताकत होते हुए भी काम से जी चुराना,
मतलब बिस्तर पर पड़े रहना।
जी। और प्रमाद का अर्थ है मानसिक जड़ता, शरीर तो शायद काम कर रहा हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, निरर्थक चीजों में उलझा हुआ है।
अच्छा, तो आलस्य हुआ सुबह जिम जाने के लिए बिस्तर से न उठ पाना, और प्रमाद हुआ जिम में कसरत करते हुए भी दिमाग में ये सोचना कि घर जाकर क्या खाना है।
एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने।
और आज के डिजिटल युग में तो प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है, फोन उठाते ही पता नहीं चलता कि कब आधा घंटा सिर्फ रील्स देखने में निकल गया।
बिल्कुल। और इसका परिणाम ये होता है कि जो समय देवता की इस तरह अवहेलना करते हैं, सत्संकल्प उन्हें अल्पजीवी कहता है।
अल्पजीवी, कम उम्र वाले?
नहीं, चाहे उनकी उम्र 100 साल ही क्यों न हो, अल्पजीवी मतलब जिन्होंने अपने जीवन को निरर्थक ही बिता दिया।
वाह, सत्संकल्प में महाभारत का एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है, वो क्या है?
हाँ, एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, जब वेद व्यास जी को महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ कम समय में लिखना था, तो उन्होंने लिखने के लिए गणेश जी की सहायता ली। काम समय से पहले ही पूरा हो गया। तब व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, गणेश जी, पूरा महाभारत लिख गया और इस दौरान आप एक शब्द भी नहीं बोले।
और गणेश जी का उत्तर तो और भी अद्भुत था।
उन्होंने कहा, भगवान, इसी संयम के कारण हम लोग वर्षों का कार्य कुछ ही दिनों में पूरा कर पाए। बातों में समय नष्ट करने से काम में देरी होती है।
क्या बात है, मतलब चुप्पी और एकाग्रता में इतनी शक्ति है कि सालों का काम दिनों में हो सकता है।
हाँ, इसका सार यही है कि अपने काम में पूरी तरह डूबकर और व्यर्थ की बातचीत से बचकर शांत रहना समय संयम का सबसे बड़ा रूप है।
चलिए, अब तीसरे संयम पर आते हैं। समय और इंद्रियों को तो शायद हम फिर भी साध लें, लेकिन विचारों का क्या करें? ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते जाते रहते हैं,
इन्हें कैसे रोका जाए,
है ना?
हाँ, पूज्य गुरुदेव इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने नहीं देना चाहिए।
आवारा कुत्तों की तरह?
जी, उन्हें एक मर्यादा में, एक सीमा में बांधकर सृजनात्मक कामों में लगाना चाहिए।
पर ये अभ्यास कैसे हो? मन को रोकना तो सबसे मुश्किल कामों में से एक माना गया है।
इसके लिए सत्संकल्प में एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है। हमें अपने मन में पहले से ही सद्विचारों की एक सेना तैयार रखनी चाहिए।
एक सेना?
हाँ, जैसे ही कोई निरर्थक, अनुपयोगी या नकारात्मक विचार मन में उठे, ये सद्विचारों की सेना उससे जूझ पड़े और उसे खदेड़कर बाहर कर दे।
अपने ही मन में सद्विचारों की एक सेना तैयार रखना, ये कल्पना ही कितनी शक्तिशाली है। मतलब नेगेटिविटी आने से पहले ही आपका अपना डिफेंस सिस्टम उसे बाहर कर दे।
बिल्कुल, एक तरह का मेंटल एंटीवायरस।
हाँ, सही शब्द है, मेंटल एंटीवायरस।
एक और बेहतरीन उपमा दी गई है चिड़ियाघर की।
अच्छा।
जैसे चिड़ियाघर में जानवर एक बड़े बाड़े में घूम फिर तो सकते हैं, पर उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक यही नीति हमें अपने विचारों के साथ भी बरतनी चाहिए।
मतलब उन्हें एक उपयोगी दिशा में सीमित रखना चाहिए।
जी, जहाँ तहाँ बिखरने नहीं देना चाहिए। मनोनिग्रह का यही अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की गारंटी है।
ठीक है, तो हमने इंद्रिय, समय और विचारों को साधने की बात की।
हाँ,
लेकिन एक चीज है जो इन सबको प्रभावित करती है और वो है पैसा,
अर्थ।
हाँ, हमारा चौथा संयम अर्थ संयम। सत्संकल्प कहता है कि पैसे को समाजोपयोगी सामर्थ्य मानना चाहिए। इसका असल में क्या मतलब है?
इसका अर्थ है कि धन को केवल व्यक्तिगत संपत्ति ना मानकर एक ऐसी क्षमता के रूप में देखना जो समाज के काम आ सके, क्योंकि धन हमारे परिश्रम और मनोयोग का ही तो फल है ना? इसका अपव्यय यानी इसे फिजूल में खर्च करना या फिर अनीति से कमाना, दोनों ही तरीके घर में दुष्प्रवृत्तियों को निमंत्रण देते हैं।
तो बुद्धिमानी किसमें है? न ज्यादा जमा करने में, न ज्यादा उड़ाने में। सत्संकल्प का रास्ता क्या है?
सत्संकल्प का रास्ता है संतुलन। बुद्धिमानी ना तो अनावश्यक संचय में है, न ही अपव्यय में। यहाँ समुद्र का एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है।
समुद्र का?
हाँ, समुद्र नदियों से मिले जल का संचय नहीं करता, वो उसे मेघ बनाकर बरसा देता है। बदले में नदियाँ दुगना जल लेकर उसके पास लौटती हैं।
अरे वाह।
अगर समुद्र भी कंजूस हो जाए और पानी जमा करने लगे तो नदियाँ सूख जाएंगी और धरती पर अकाल पड़ जाएगा। यही नीति धन के लिए भी होनी चाहिए।
समुद्र वाला उदाहरण बहुत सुंदर है, लेकिन आज की दुनिया में एक आम इंसान को तो भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, इन सबके लिए पैसा जमा करना ही पड़ता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
तो क्या सत्संकल्प बचत करने को गलत मानता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्संकल्प बचत का विरोधी नहीं है, बल्कि वो अपव्यय और कृपणता यानी कंजूसी का विरोधी है। जरूरत के लिए बचत करना तो एक कर्तव्य है।
अच्छा।
लेकिन आडंबर, दिखावा, फैशन और भव्य विवाहों में जो अनावश्यक खर्च होता है, सत्संकल्प उस पर चोट करता है।
हाँ, और आजकल तो दिखावे का दबाव इतना ज्यादा है, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, डेस्टिनेशन वेडिंग।
बिल्कुल, सत्संकल्प में इसी के लिए लक्ष्मी और माया का भेद समझाया गया है।
लक्ष्मी और माया?
हाँ, जब धन अच्छे कामों में, जरूरतों को पूरा करने में लगता है तो वो लक्ष्मी है, लेकिन जब उसका अपव्यय होता है या उसे अनीति से कमाया या खर्च किया जाता है तो वही धन माया बन जाता है। और सत्संकल्प स्पष्ट कहता है, माया का नाश निश्चित है।
तो इन चारों संयमों को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज साफ हो रही है, संयम का मतलब सिर्फ ना कहना या खुद को रोकना नहीं है।
आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है।
ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है।
यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। संयम का एक पक्ष जहां अनावश्यक अपव्यय को रोकना है, वहीं दूसरा और ज्यादा जरूरी पक्ष है उस बचाई हुई शक्ति को सृजनात्मक अच्छे कामों में लगाना।
वाह, मतलब ऊर्जा का संरक्षण और फिर उसका सही दिशा में निवेश। जैसे एक बांध नदी के पानी को सिर्फ रोकता नहीं है, बल्कि उसे इकट्ठा करके बिजली बनाने के काम में लाता है।
बहुत सुंदर उपमा है।
संयम भी हमारे जीवन का वही बांध है जो हमारी इंद्रियों, समय, विचार और धन की ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकता है
और किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी कोई भी सामर्थ्य तभी बेहतरीन परिणाम देती है जब उसे अस्तव्यस्तता से बचाकर सत्प्रयोजनों में यानी अच्छे उद्देश्यों में लगाया जाए।
तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने देखा कि इंद्रिय, समय, विचार और अर्थ, इन चारों क्षेत्रों में संयम का अभ्यास जीवन को संतुलित और सफल बनाने की एक प्रैक्टिकल कुंजी है।
जी,
ये खुद से एक लड़ाई जरूर है जैसा हमने शुरू में कहा था, लेकिन इसका इनाम सुख, स्वास्थ्य और सच्ची संपन्नता है।
और इस संयम को साधने में सबसे बड़ी बाधा, जैसा पूज्य गुरुदेव ने संकेत दिया है, इसके सही स्वरूप को न समझ पाना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, इसके लिए निरंतर अभ्यास और ईमानदार प्रयास की जरूरत होती है।
इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। संयम का असली अर्थ है ऊर्जा को बचाकर सृजन में लगाना। तो क्यों ना सोचा जाए कि इन चार शक्तियों में से किसी एक को, जिसे हम आज सबसे ज्यादा व्यर्थ कर रहे हैं, उसे बचाकर किसी एक छोटे से रचनात्मक या सार्थक काम में कैसे लगाया जा सकता है। पहला कदम क्या हो सकता है?